राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 26 अगस्त 1991 को साय लगभग 4 बजे हुआ। राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम महाराज 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 नारायण 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 नारायण। अर्जुन ने 4 प्रश्न किए, 54वें श्लोक में 4 प्रश्न किए हैं। स्थितभगी के लक्षण क्या होता है, वो बैठता कैसे है और चलता कैसे, बोलता कैसे, बैठता कैसे, चलता कैसे, 4 बात। जिसमें एक प्रश्न का उत्तर दिया कि प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, ये एक श्लोक पूरे कर्मयोग में घटेगा। 72 तक श्लोक है, उनमें सब में ये घटेगा, एक लक्षण है ये। तो लक्षण क्या है कि संसार की कामना का त्याग और आत्म स्वरूप में स्थिति, ये 2 बात है। अभी पहले आया था जिसे मोह कलिल को तरना आया था, फिर सुति पति को तरना आया था। ये संसार के 2 भाग है, इनसे उतर जाता है तब योग को प्राप्त हो जाता है। तो योग प्राप्त हो जाता है वो आत्मा ना तुष्टा है, वो स्थिति पर कहलाता है। अब वो बोलता कैसे, स्थिति किम प्रभाषित किम आसित कैसे बोलता है, तो बोलने के लक्षणों का 2 श्लोकों में वर्णन है। ऐसे वो बोलता है, दुखे स्वनुद्विग्न मना सुखे सुविगत वीतराग विरक्रोध से दुखेशु अनुद्विग्न मना, दुखों की प्राप्ति होने पर मन में उद्वेग नहीं होता, और सुखेशु विगत स्त्री, सुखों में स्त्री नहीं होती, परवाह नहीं होती भी सुख मिले, इसलिए खिंचाव नहीं होता। और वीत राग भय क्रोध, राग और भय क्रोध ये तीनों जिसके चले गए, विषय ने इतागता राग भय क्रोधा ये स्त्रीसा, वो स्थिति मुनि रुचे थे, वो स्थिति मुनि कहा जाता है। ये मुनि शब्द प्रसिद्ध भाषा में मौन रखने वाले का नाम है, तो कम प्रभाषित उसका ये उत्तर हम मान लेते हैं। भगवान ने मौन शब्द का प्रयोग मन की तपस्या में किया है, मन प्रसाद सौम्य तुम मौन महात्म विनग्रह भाव संशुद्धि तपोमान समुद्र से, तो मन का मौन ही बढ़िया मौन है। पर यह मौन का मुनि सोचते तो ये स्त्री पुरुष कैसे बोलता है। दूसरा, यह सर्वत अनभिस्नेह, किसी जगह भी अभिस्नेह नहीं, तत्त प्राप्त शुभा शुभम, जो शुभ और शुभ प्राप्त हो गया, अनुकूल और प्रतिकूल प्राप्त हो गया, तो उसके अभिस्नेह नहीं है। ना अभिनंदन न देशी, शुभ की प्राप्ति होने पर अभिनंदन नहीं करता और अशुभ की प्राप्ति पर द्वेष नहीं करता। सच्चे ये सिद्ध प्रज्ञ के लक्षण बताए, तो अभिनंदन द्वेष, ये अभिनंदन नहीं करता, शुभ मिल जाए तो उसमें अर्जित और खुश होकर नहीं बोलता है, और द्वेष भी नहीं करता, विरुद्ध आ जाए द्वेष नहीं करता है, वो स्थित पर है। ऐसे 2 श्लोकों में किम प्रभाषित का उत्तर दिया। अब विचार करना है कि ये जो लक्षण है, ये कैसे है? तो लक्षण ही विलक्षण है। मानो ऊपर से तो ये बात है, वो उसके लक्षण क्या है और वो कैसे है, बोलता है कैसे, बैठता है कैसे, चलता है, तो ये भाषा कैसे बोलता है इसका ये नहीं भी संस्कृत बोलता है कि हिंदी बोलता है, कौन सी भाषा बोलता है ये नहीं, कैसे बोलने की चतुराई कैसी है ऐसा नहीं। मानो हृदय में कैसे भाव होते हैं, लक्षण वास्तव में हृदय के वो बताना है, बाहर की केवल भाषा नहीं बताना है, बतानी है। इस बात से पहले बार दुखे सो अनुग्न, दुख आ जाए तो मन में उद्वेग नहीं होता, मन हल्लाते ही मचाता, कभी अब आफत आ गई क्या करें, दुख क्या करें, ऐसे वो उसके बात नहीं। ये सुख दुख आते रहते हैं, जैसे रात हो जाती है तो रात होने पर सबका व्यवहार बंद हो जाता है, और व्यवहार कुछ करना होता है तो दीपक के प्रकाश में कर सकते, बिना प्रकाश के हम वहाँ काम नहीं कर सकते, उसकी पराधीनता होती है। परंतु सूर्य अस्त अपन को रोते नहीं, शोक नहीं करते, दुख नहीं करते, क्योंकि देखते हैं कि सूर्य अस्त होता है, अब रोज नहीं होता है, तो ऐसे किसी के मरने पर भी, दुख होने पर भी वो रोता नहीं। ये तो रोते होते रहते भाई, जन्म है उसको मरना होता है, मरते हैं फिर मुक्ति नहीं होती, फिर जन्मते हैं और जन्मते हैं वो मरते हैं, नई बात क्या होगी। संपत्ति विपत्ति आती है, नफा और नुकसान भी होता है, संयोग वियोग होता है, ये तो संसार का स्वरूप है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इस बात दुखे सो अनुग्न मारा, दुखों में उसके मन में उद्वेग नहीं होता, हलचल नहीं होती, कोई नई बात थोड़ी है। अब घाम आ जाए तो आदमी घबराता है क्या? ठीक है भाई, नहीं सुहा तो सामान उठकर छाया लड़ जाओ, जाया आता है तो भी हमें सुहाता नहीं तो कपड़ा ओढ़ लो, किसी की रक्षा में चले जाओ, ये कोई दोष की बात नहीं, पर मन में घबराहट करना ये दोष की बात है। देखो परिस्थिति का ज्ञान होना, ज्ञान होना दोषी नहीं है, विकार होना दोषी है। दुखों के प्राप्त होने पर दुखों का ज्ञान हो गया और ज्ञान होने पर उनका प्रतिकार कर दिया, कोई दोष की पाप की बात नहीं, परंतु भीतर में विकार नहीं होना चाहिए, ये कोई नई बात थोड़ी है। दुखों का आ जाना, सुखों का आ जाना, अनुकूलता आ जाना, प्रतिकूलता आ जाना, ये कोई नई बात नहीं है, तो सदा रहती है, अनादिकाल से संसार में से होता ही रहता है। हम कहाँ तक हंसेंगे, कहाँ तक रोएंगे? तो वास्तव में निर्विकार रहना है, ये स्थित प्रज्ञा के लक्षण है। क्यों? प्रज्ञा बुद्धि जिसकी स्थित हो गई, स्थिर हो गई, तो स्थिर बुद्धि असमूढ़ा, उनकी मूर्खता चली गई, ब्रह्मणी स्थित परमात्मा में स्थित है, तो बुद्धि जिनकी अटल हो गई, तो अटल कहाँ हो गई? परमात्मा के स्वरूप में बुद्धि अटल हो सकती है, सांसारिक पदार्थों में बुद्धि अटल नहीं हो सकती। उसमें तो सुख दुख दोनों अलग अलग होंगे, उसमें बुद्धि अटल कैसे होगी? तो परमात्मा स्वरूप बुद्धि स्थिर हो जाने के बाद दुखों के प्राप्त होने पर कोई हलचल नहीं होती, और सुखों पर स्प्रिया नहीं कि सुख मिलता रहे अथवा ये सुख बना रहे और अनुकूलता आती रहे, ऐसी कोई बात नहीं, स्प्रिया नहीं। और बीच राग भय को राग और भैर को देश लगे, पदार्थ में राग होता है जिसका रंग चढ़ जाता है मन पर, वो प्रिय लगती है वस्तु, तो मन पर रंग चढ़ गया। अब रंग चढ़ गया, उस रंग को कोई दूर करे, मन हमारे पदार्थों की इच्छा हुई, हमारे धन की इच्छा हुई, तो उनका धन का राग चढ़ गया मन पर। अब इस राग में प्राप्ति होने वाली थी, इसने किसने बाधा दे दी, धन की इच्छा, धन कोई देता है था, उसने बाधा दे दी, तो बाधा देने वाला अगर हमारे से बलवान है तो उस पर गुस्सा आए तो फेंकेगा कि भाई इसमें करोगे से मटर डालेगा, तीस डालेगा कहीं, तो भय लगेगा। और उस पर ऐसा चले कि हम इसको मार सकते हैं तो क्रोध आएगा, हम निर्बल मालूम जाएंगे तब तो आएगा भय, और हमारे को बलवान अपने को मानेंगे कि हम इसको ठीक पसार सकते हैं तो क्या होगा, क्रोध आएगा। ये राग से ही पैदा होते हैं दोनों, सभी राग से ही पैदा होते हैं, राग अगर पैदा हो जाते हैं, राग नहीं तो भय होता है ना क्रोध होता है, तो राग जीत राग भय क्रोध, राग चला गया तो भय और क्रोध भी चले गए। ऐसा स्थिति मुनि रुचते, ऐसा स्थित बुद्धि वाला मुनि कर रहा था, मुनि मन मननशील, परमात्म तत्व का मनन कर रहा है, पदार्थों का मनन करे भोगों का करे तो उनकी हानि और लाभ में फर्क पड़ेगा, परंतु मनन ही उसका दूसरा है। आप दूसरी वस्तु के ग्राहक है तो आपके हानि लाभ, दूसरी चीज का हानि लाभ आपके असर नहीं करेगा। जैसे आप भोजन खाने में बैठे और भोजन पवित्र भोजन के आप ग्राहक है तो वहाँ मांस मछली मछली नहीं मिलेगा, दुख होगा। हम चाहते ही नहीं, हम चाहते हैं उसमें सुख दुख होता है, तो वो परमात्मा में रुचे पसे रहते हैं, वे सांसारिक सुख दुख से सदैव अलग रहते हैं, वे दुख के वशीभूत भी नहीं होते, तो उनका वास्तव में विषय दूसरा है, वे दूसरे देश में है, वो देश हमारा ये नहीं है। इस देश में रहने वालों को तो फर्क पड़ेगा भाई, अनुकूल साम्राज्य होगी प्रतिकूल नाराज हो जाएंगे, परंतु उनका देश परमात्मा है, इस देश की हम ग्राहक नहीं है, तो इस देश में हानि लाभ हो तो हमारी क्या हुआ। जैसे कोई साधु हो गया, साधु होने के बाद घर में कोई बहुत मुनाफा हो गया तो कोई हर्ष नहीं होता, और घाटा लग गया तो कोई दुख नहीं होता। वो समझे हम अलग, ये अलग है, अपना घाटा हो नफा हो नुकसान हो जन जीव है मरे घर में कुछ भी हो जाए हमें इनसे मतलब नहीं है। इन सब बहुत विलक्षण बात है, मन संसार उनका ये नहीं रहता है, जो संसार संसारियों का है ऐसा उनके नहीं रहता है, वो सब ऊंचे उड़ जाते हैं, इस बात की उनके उसे शोक नहीं होता, वो स्थिति मनन परमात्म तत्व का मनन है, उसी में ही स्थित रहते हैं। वो स्थिति मुनि रुचि थे, वो स्थिति मुनि रचा स्थिति क्यों प्रभाषित, इसमें स्थिति पर दिया है, स्थिर बुद्धि वाला कैसे बोलता है स्थिति मुनि रुचि थे। मुनि कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, मन से परमात्म तत्व का ही मनन है, सांसारिक विषयों का पदार्थों का मनन नहीं है, इस वास्ते मुनि कहा जाता है। यह सर्वत्र स्नेह, अभी स्नेह कहीं नहीं है, अभी स्नेह उसको कहते हैं जैसे बच्चा बीमार हो जाए तो माँ ठीक है बीमार नहीं है सेवा करती है, पर सेवा में इतनी चिंता होती है माँ के शरीर की शक्ति कम हो जाती है, थोड़ा बीमार है इस बात की चिंता को लेकर माँ के शरीर में कमी आ जाती है, शक्ति कम हो जाती है, भूख कम लगती है, मन नहीं लगता है, सही ठीक है माँ का, परंतु अभी स्नेह इसको कहते हैं जिसमें एकता का अनुभव करे, बालक के साथ में अपना एकता का अनुभव करते हैं, जिसमें ज्यादा स्नेह होता है उसका असर पड़ जाता है। धन में ज्यादा स्नेह धन चला जाए तो धन के जाने से व्याकुल हो जाता है, घबरा जाता है, धन चला गया हमारा आधार था भाई, ऐसे भाई है पति है पुत्र कोई मर जाता है तो उससे बहुत ज्यादा व्याकुलता हो जाती है, क्योंकि उनको वो आधार है। जैसे हम यहाँ बैठे हमारे नीचे से जमीन खसक जाए तो हम कहाँ बैठे, ऐसे जिसने आधार माना है वो आधार खसक जाता है तो उसके दुख होता है। सर्वत्र स्नेह शिव जी की किसी की अभी स्नेह है ही नहीं, मान तादात में करके उसके साथ एकता मान करके जो स्नेह होता है वो अभी स्नेह कह रहता है, ऐसा है ही नहीं कहीं। चतुर्थ प्राप्त शुभ है, सब शुभ अशुभ प्राप्त हो गया तो शुभ हो जाए अशुभ हो जाए। अभी स्नेह होगा तो उसमें असर पड़ेगा शुभ अशुभ का। सर्वत्र अनभी स्नेह है तो शुभ हो जाए अशुभ हो जाए, अपना स्नेह है ही नहीं। योग दर्शन में आया है ऋतम भरा तत्व प्रज्ञा, उनकी प्रज्ञा सत्य को धारण करने वाली, ऋतम सत्यम विभर्ती ऋतम भरा सत्य को धारण करने वाली है। उस प्रज्ञा है उसने लिखा है प्रज्ञा प्रासाद मान लीजिए, प्रज्ञा रूप एक हवेली है बड़ी भारी हवेली, बहुत बड़ा मकान प्रासाद है, बड़ा किला है, उसे ऊपर चढ़ जाता वो प्रज्ञा प्रासाद मान लीजिए। अशोच्य सोच तो देना, स्वयं तो अशोच होगा उसी लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। अब सोचता देना जो सोच करने वालों को देखता है कैसा देखता है तो भूमि स्थानीय शहर था, शहर के ऊपर चढ़ा हुआ बड़े भारी पर्वत के ऊपर बैठा है और पृथ्वी के ऊपर रहने वाला आदमी को देखता है, कहीं बाढ़ आती है, कहीं आग लगती है, कहीं घाम पड़ती है जोर से, कभी हवा जोर से आती है, तो भूमि पर स्थित है उनको वो देखता है। तो शैलस भूमि स्थानीय शैलस का सर्वान प्राज्ञों उपस्थिति प्राज्ञ सबको देखता है, परंतु वो उन भूमि में स्थित होने वाले आदमियों में आने वाली आपत्ति से बिल्कुल रहित है, क्योंकि तो पर्वत के ऊपर से चढ़ा हुआ है ना, तो उसकी कोई असर नहीं करते पदार्थ, भोग पदार्थ संयोग वियोग उस पर असर नहीं करते, क्योंकि उनकी स्थिति ही और हो गई, शरीर में स्थिति नहीं रही। शरीर में स्थिति रहता होते बात होती है, स्थिति नहीं रहने वाला का यश नहीं है, कोई मर जाता है कि प्राण निकल जाते हैं, यश नहीं है, मोह नहीं रहता है मोह। जैसे आप अपने घर में रहते हैं एक इस पंडाल में रहते हैं, तो पंडाल में बैठे रहने पर भी आपके इसका मोह नहीं है। धर्मशाला में आप रहते हैं, रहते हुए भी उन मकानों में मोह नहीं है, अपना मान लो तो मोह हो जाता है, तो अपना मानना वो मिट जाता है, मर नहीं जाते। शरीर के साथ भी कोई संबंध विच्छेद हो जाए, शरीर न रहे ऐसी बात नहीं, शरीर के रहते हुए भी शरीर की विपरीत हो जाती है, लापरवाही हो जाती है, शरीर ठीक रहे बेठीक रहे ऐसा उद्योग बिगड़ता है, अन्न जल भी देता है, औषध भी देता है, सब ठीक करता है, पर ठीक हो जाए तो मौज, ठीक न हो जाए तो मौज, चिंता भी बात की। ये तो शरीर है, शरीरों का धर्म भाई होगा, सर मंदा होगा, एक होगा होता रहेगा, आप मिटा नहीं सकते। बड़े बड़े संत महात्मा हुए, जीवन मुक्त हुए, उनके भी शरीर में तो पीड़ा भी हुई है, रोग भी आया है, मृत्यु भी आई है, संयोग भी हुआ है, वियोग भी हुआ है, सब तरह होता है, परंतु उनके अंतःकरण में कोई विकार नहीं होता, क्योंकि वे ऊंचे उठ गए, शरीर से ऊंचे उठ गए, परिवार से ऊंचे उठ गए, उनके क्या दुख हो क्या सुख हो, गृहस्थ में रहते हुए भी गृहस्थ से ऊंचे उठ रहना चाहिए। मानो बाधा किसकी है, जो हम गुलामी स्वीकार कर रहे हैं उसी बाधा है, अमुक व्यक्ति चाहिए, अमुक भोग चाहिए, अमुक परिस्थिति हमारे को चाहिए, ऐसी मन में आ जाती है, यह है दरिद्रता, यह है गुलामी, यह है दासता, ये जिसकी मर जाती है वो भगवान के गुलाम है, दास है, जो कुछ है गंज है भगवान की, इसी सिवाय किसी के नहीं, अरे भगवान है जो रहते उनमें कोई विकार होता नहीं, तो हमारा विकार कैसे हो। वो परमात्मा तत्व में नित्य निरंतर स्थित है, उस तत्व में कोई विकृति आती नहीं, इस वास्ते उनको विकृति होती नहीं, सर्वत्र विषय है ना अभिनंदन प्रतिष्ठा, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, तो सर्वत्र विषय किसी की अविष्णय नहीं। ऐसे किम प्रभाषा कैसे बोलता है कि उनके मन में राग द्वेष नहीं होती, राग द्वेष पूर्व नहीं बोलता है, राग की और द्वेष की भाषा वो नहीं बोलता है, वो तो समता में रहता है, समता में स्थित रहना ही मनुष्य का धर्म है। यही तेज सत्सर्ग ये साम्य स्थित माना, जिन लोगों का साम्यावस्था मन स्थित हो गया, उन लोगों ने यहाँ ही जीवित अवस्था में संसार व्यतीत किया, संसार पर उनकी विजय हो गई, संसार पर विजय, संसार हारे नहीं, और संसारिक सुख और दुख वो आकर थपेड़ा लगाता है, राम उसमें अभिभूत हो जाते हैं, हार जाते हैं, तो हमारी जीत नहीं होगी। तो वो जीत कौन है कि यही तेज दस आएगा संसार को जीत गया, ये संसार में स्थित हुआ, मन समता में स्थित हो गया। जैसे बचपन में कांच के टुकड़े और ठीकरी के टुकड़े इसको लेकर खेलते थे, तब लड़ाई होती थी और शिकायत करते थे, घर बनाया हमने जमीन खाती दो, हमें देर बना दी थी, हमारी हमारा जमीन, हमारी घर है, हमारी जमीन है, दूसरा उसके ऊपर लेकर अय्या बना दिया, तो लड़ाई हो जा कि तुम्हारे हमारी जमीन ले ली, वो कहते नहीं हमारी जमीन, वो कहते कि हमने लकीर पहले खींची थी, वो कहते मैंने पार पहले बनाई थी, हमारा है, वो कहते हमारा है, लड़ने लगे आपस में मार के, अच्छा क्यों डरते हो, जैसे हमारा घर है यहाँ पर इसने दखल कर दिया, क्या था मैंने पैर से लकीर खींची थी यहाँ मेरा घर बनेगा, तो इसने आके पार बना ली, अपनी भीत बना ली, जिसे में हमारी जमीन ले ली, ऐसा मत करो, क्या करो, अच्छा अब ऐसा करो कि तो आदि आदि करो, आदि तुम ले लो, आदि वो ले लो, ऐसे करो, न्याय कर दिया, राजी हो गए, थोड़ी देर भोजन दौड़ गए, अब पूछा पास पास सोचते ही नहीं कि हमारी जबान कहाँ है, ऐसे ही लड़ाई करते हैं, राम नाशक बोल जाती, पीछे इनको कागज है, पत्र है, इनको चिट्ठी है, इनको तार है, न फोन है, कुछ नहीं, हमारी जमीन कहाँ है, कैसे है, तो बचपन में वो करते थे, आज लड़ाई करते हो गया उन खिलौनों के लिए, कांच के टुकड़ों के लिए, अब याद है लाल पीला लाल काले ऐसा कांच का टुकड़ा देख रहे थे, बस सब लाल लाल आदमी, अब क्या मिल गया बताओ, हजार टुकड़ा देख रही, एक बार हाथ दे रहे थे, एक आंख से देख रही थी, और मुट्ठी में रख, बड़ी संपत्ति, वो मामूली चीज नहीं है, आपके तो क्या है, आपको क्या तो आपके लाख रुपए क्या है, नहीं करता उनके, वो बड़ी पूंजी है, बड़ी अच्छी चीज है, अपने सुख की सामग्री है, हमने देखा है, आपको याद हो उन्हें पता नहीं, हमारे याद भी समझिए, ये झार होते है ना कांच के, उनके छोटा होते हैं, छह पोड़े होते हैं, देखे तो छह दिखे, एक आदमी छह आदमी दिखे, राजी होते, जेब में रहते, हाथ में रहते, बड़ा प्रिय है उसका, आज क्या मूल्य है उसका, अरे यहाँ खरीद दिया जाएगा उसका, क्या करेगा, क्या मतलब है, तो अब क्या हुआ, उस अवस्था से ऊंचे उठ गया, और बच्चा अवस्था से ऊंचे उठ गए, अब बच्चा अवस्था की बात आपकी नहीं, ऐसे रुपये पैसों की बातों को लेकर राग द्वेष करते हैं, जो रुपये ऊंचे उठ जाते हैं, अरे क्या इसमें करते हो, कैसे रह गया, क्या इसे रह गया, क्या कैसे रह जाए, हमारी जमीन है, हमारे रुपये रह गए, इतने दे दिए, चलो मर पड़े आपस में ठीक रहो के लिए, वो कहता ऐसा इतने हमारे गंडा थे, हमारे इतने गंडा होते इतने चीज हमारे होते, वो कहते हमारा होता है, कहते इसने ले लिया हमारा, तो तुम क्यों ले गए, यही नहीं हमने इसे दिया ही नहीं, वो कहते मेरा है, लेकिन मेरा उठा लिया इसने, वो कहता मैंने तो जमीन माता से लिया, श्री माता से, हम दिए ही नहीं, मैं कह दे दू, और मांगता है तो कह दे दू, मैंने तो लिया ही नहीं, तो धरती माता से लिया, हाँ तो धरती माता को दे दे, धरती माता को दे दिया, उसे तुम उठा रहे, अच्छा जी मैंने इसे लिया ही नहीं, मैं तो पृथ्वी माता से लिया, तो पृथ्वी माता को दे दे भाई पैसा, पृथ्वी माता को दे दे, तो उठा ले, अब तेरा हो गया, अब न्याय हो गया, सब राजी हो गए, दोनों हमारा न्याय कर दिया। अब क्या न्याय हो गया, क्या उठा लिया, क्या हो गया, तो आपके क्या हो गया। यूं है ऐसे संसार का धर्म, संसार की पृथ्वी, संसार का मान और बड़ाई उन लोगों की दृष्टि में ये कंकर पत्थर की तरह खेलते हैं, खिलौने बोले मेरा है, लोगों के तो मेरा है, मेरा है, मेरा है, तेरा है भाई, कुछ नहीं है, घोड़ापन है। तो वो स्थल उससे ऊंचे उठ जाते हैं, सर्वदान में किसी नहीं है, उससे बस वो प्राप्त हो जाते हैं, काम करते हैं वैसे ही, उद्योग वैसा ही है, बात वैसे ही करते हैं, परंतु ऊंचे ऊंचे रहते हैं। वे छोले लड़ते हैं, उनका इंसाफ करते तो आप भी सुनते हो नहीं, क्या है रे बात, क्यों लड़ते हो, वो कहते हमारा है, वो कहते हमारी है, इतने दिन ठीक है, इतना गंदा हमारा है, वो रह गए ये तो हमारा है। अरे तुम्हारा कैसे हुआ कि हमने इकट्ठा किया था, अरे हमारा था, इस बात से हमारा इज्जत नहीं है, वो कहते तुम्हारे सामने लिया ही नहीं, कैसे दे हम, हमने तो पृथ्वी माता से लिया था, लिया ही नहीं, तेरे कैसे दे, तेरे कैसे दे, हमारा है तो। अच्छा वो कहता है मेरा, मैंने इकट्ठा किया था, ये ले गया, तो क्या करे, तेने पृथ्वी माता से दिया, पृथ्वी माता को दे, पृथ्वी माता को दे दिया, अब तू उठा ले, राजी हाजी हो, हमारा न्याय कर दिया, अब क्या न्याय कर दिया, क्या न्याय कर दिया, तमाशा खेल है, कोई कोई खेल है, ये बात है भाई, वास्तव में ये बात है। अगर आप ठीक तरह समझो तो बात ठीक हो जाएगी, और नहीं तो भाई ठिकाना नहीं, संसार में क्या दशा होगी। तो स्थिर प्रज्ञा क्या है, प्रज्ञा नाम बुद्धि स्थिर हो गई, जैसे एक कन्या है आपकी बड़ी हो गई, उसको ब्याह दिया, ससुराल चली गई, अब उसकी बुद्धि स्थिर हो गई, हमारा घर ये है, पिता के घर बैठी तब देखो मेरा घर नहीं है, ससुराल पहुंच गई अब कहते मेरा घर है, उसकी स्थिति होगी बुद्धि कि हमारा घर है, मैं घर की मालकिन हूँ, यहाँ की रहने वाली हूँ मैं। ऐसा थोड़ा दिन हुआ है रहती वहाँ पिता के वहाँ पड़ी है बड़ी हुई सब कुछ, वो घर मेरा नहीं है, वो हमारे पिताजी का घर है, हमारे पूज्य आदरणीय भाई का घर है, मेरा घर तो ये है। साधु हो गया, अब कृष्ण घर नहीं, हम तो साधु हुए, अब साधु है गुरु जी है, गुरु भाई है, अरे सारा गुरु है, साचा गुरु है, बस वो कुटुम अलग ही हो गया अपने कुटुम, अब वो कुटुम कोई लड़ में कोई मरे, कोई ठीक हुए बेसी हुए, हमें क्या मतलब है, सहायता करे दूसरी दुनिया करे, उसकी भी कर दी, न कर दी तो नहीं कर दी, हमें वो जिम्मेवारी नहीं, तो ऊंचा उठ जाता है, उस स्थिति से ऊंचा उठना है, ऐसे सज्जनों संसार से ऊंचा उठना है, उसको स्थिति प्रज्ञा कहते हैं, प्रज्ञा स्थिर हो गई, संसार में प्रज्ञा स्थिर नहीं है, संसार में तो राग हर्षोकर ठीक है बेठी अनुभूता प्रतिकूलता थपड़े लगती रहेगी, थपड़े लगे और इनसे ऊंचा उठ गया, भगवान की भी स्थिति हो गई, अब मौज हो गई, दुख ये सब लक्ष्य घट जाएंगे, आप ना भी नंद अब किमासी तो कैसे कैसे बैठता है। यहाँ संघर्षायम कूर्मोंगानी व सर्वशः, जैसे कछुआ होता है और अंगों को समेट कर बैठता है, तो कछुए के क्या होते हैं, छह अंग होते, एक तो नार होती माथा होता है, चार पैर होते जो चलता है, एक दूसरे पूंछ होती है, दुम छह होते हैं, ऐसे मन सठा इंद्रिया मन सठा जिसमें ऐसे ये इंद्रिया बहुत छोर है, ये संघ चाहे उनका संहार कर देता है, उसके ऐसे सुअर ऐसे करो चट हो देता है, पैरों को पूछड़ी को नर को सब खोपड़ी के नीचे निकलता है, खोपड़ी खोपड़ी से कुछ नहीं। तो जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे इंद्रियों को मन को समेट करके बैठता है, वो कछुआ जैसे बैठता है, इस तरह से उसका बैठना होता है, इंद्रियां इंद्रियों के अर्थों से इंद्रियों को लेते प्रज्ञा प्रतिष्ठा, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, तो बैठता कैसे है कछुआ बैठते जैसे कछुआ जैसे अपने सौ अंगों को चार पैर एक नाक एक पूंछ इन सौ अंगों को जैसे समेट करके अपने पशुओं पर बैठता है ऐसे उसके बैठने में अपने इंद्रियां है वो तंग नहीं करती भोगों में जाते नहीं सिद्ध प्रज्ञ उसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई परमात्मा के स्वरूप में बुद्धि स्थिर हो गई बस अब उसमें नहीं जाती जैसे आपको बुद्धि स्थिर होगी रुपयों में अब ठीक नहीं कंकर पत्थर में नहीं जाती रुपयों में स्थिर होगी ऐसे उनके रुपयों और भोगों से जीवन जाता से ऊंचा उसकी परमात्मा में स्थिर हो गई संसार में ऊंचे से ऊंचा पद मिल जाए इंद्र लोग ब्रह्म लोग को पद मिलता है तो स्थिरता नहीं होती क्योंकि वो स्थिर नहीं है वो नाशवान है क्षरभंगुर है तो इनमें कितने पद मिल जाते कुछ नहीं मिला परमात्म तत्व की प्राप्ति हुई तो सब मिलता तो ये विलक्षण बात है अनोखी बात है तो उसे कैसे बैठता है कुमंगारी व सर्वशः सब प्रकार से इंद्रियों की अर्थों से इंद्रियों को समेट करके बैठ जाता है क्योंकि महाराज ये विषयों का जो इंद्रियों से छूट जाना है यही बैठना है इतना ही है का इतना नहीं है एक बात और है इसमें विषय तो निवृत्त होते हैं हम सेवन ना करें नियम ले लें कि इतना ही खाना इतना देखना इतना सुनना और नहीं करना है तो नियम से भी विषयों की निवृत्ति हो जाती है इंद्रियों से विषयों संबंधित छोड़ हो जाता है अथवा हम बीमार हो जाते हैं तो विषयों का सेवन कर नहीं सकते तो विषयों का इंद्रियों का संबंध विच्छेद हो जाता अच्छा नींद आ जाती है तो उसमें विषयों इंद्रियों का संबंध विच्छेद हो जाता है तो विषय का संबंध विच्छेद मात्र ही नहीं होता है इनका कछुए की तरह ऊपर से ही समझ लिया ऐसी बात नहीं है तो क्या है कि विषय विनिमय के निराहार से दे जो निराहार है जिसने कुछ नहीं किया है तो इंद्रियों का आहार भी नहीं किया भोजन भी नहीं किया तो विषय निवृत्त हो जाते हैं विषयों की इच्छा छूट जाती है जोर से भूख और प्यास लग गया फिर क्या होते ये बहुत असर बहुत बढ़िया है इधर वो बड़ा सुंदर ये सुगंध कैसी आ रही है ये तेल है ये फुलेर है ये अतर है ये लवेंडर है बहुत असर है ये जूही का है ये देखो सुहा कैसा है केसर का असर है ठंडी पड़ती हीना है हीना बहुत बढ़िया असर है बढ़िया देखो अब भूखा मर रहा है उसको मेरे को लगी भूख अन्न चाहिए मेरे को असर बहुत बढ़िया दे रहा है क्या करे बाले जा भूखा मर रहे भूखा तो विषय निवृत्त हो जाते हैं निराहार होने पर भी विषय निवृत्त हो जाते हैं परंतु बीच में रस बुद्धि रहती है कि असर है तो बढ़िया ये कीमती असर ये साधारण है उसमें ही रहता है तो रस भर जाऊ रस रह जाता है विषय निवृत्त हो जाते हैं ऐसे रस निवृत्त हो जाए परम दृष्टि रसो भी निवृत्त होते परमात्मा तत्व तो की प्राप्ति हो जाती है सिर्फ हो जाते हैं तो उनमें रस ही सूख जाता है ऐसे कुछ नहीं जैसे बच्चे खेलने से दूर कर दो पढ़ाने लग जाओ तो विषय से निवृत्त हो गए खेल से अलग हो गए परंतु खेल में रस है एक खेल में एक आनंद तो है ही उभर जाता है परंतु जो बड़े हुए रुपये में रस आया रसो कैसे खेलने के मन में ही नहीं आती कंकर पत्थर से खेले ठीक है गाँव में खेले हम लोग ही खेलते थे अब हम लोग ला करते ठीक है अब इनसे खेलो या हंसी आती है क्या कोई मस्करी करते हो हमारे साथ दिल की उड़ाते हो हमारे दिल की तुम लड़ते थे ठीक है लड़ाई करते थे मेरा है वो मेरा है मेरा तो भोलापन था ऐसे रुपयों के लिए जमीन के लिए बड़ा लड़ाई करते हैं राम में गोसम मचाते हैं है क्या इसमें पड़ा क्या है परंतु अभी समझ नहीं आता बचपन में समझ में नहीं आता था क्या है ठीक रिश्ते क्या हो गया इसमें क्या कैसे हो गया न्याय करो इंसान पर या अन्याय करते हो या अन्याय के राशि हो अब न्याय कर दिया फिर छोड़ चले गए क्यों नहीं छोड़ा वे ठीक नहीं पड़ी है वही पड़ी है ऐसे यहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता है, कचहरी में मुकदमा चलता है, राम नाम सत है, तार न चिट्ठी न समाचार न फोन कुछ नहीं, कि विजय हुई कि पराजय हुई, जीत हमारी हुई, उस पार्टी हुई किस पार्टी हुई, अब किसी भी हो जाए किसे मतलब क्या, आपने अपने से कोई मतलब नहीं है इस बात, तो ऊंचा उठ जाता है इससे। ये संसार है जैसे खिलौनों के खेल से बच्चा होता है, वो ऊंचा उठकर जवान हो जाता है, खेलने के नहीं आती। आजकल बूढ़े बूढ़े खेलते, आजकल बचपन हो गया, बच्चों का काम क्या, खिलौना खेलना और जाते बेटे खाता रहना, बता रहे ये दोनों सभ्यता है। आज तो बूढ़े हो जाए, सफेद बाल हो जाए तो चलते बेटे खाएंगे, अरे से खेलेंगे खेलने से आगे खेलते हैं, बचपन वो नहीं होता, ये बड़े होते ही नहीं, सफेद बाल हो जाए फिर छोटे ही है, सफेद बाल भेड़ के ही होते हैं, क्या बड़ी हो जाती है, क्या हुआ सफेद बाल हो गया, सही बूढ़ा हो गया, क्या हो गया, भीतर तो बचपन ही बचपन बना है, खेल तमाशा इसमें राजी रहते हैं।